जैसे को तैसा। सभी के दिलों में आज एक अलग ही तरह का जोश और जज्बा था। सभी लोग काफी ज्यादा एक्टिव लग रहे थे और कुछ कर गुजरने का साहस उनके चेहरों पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिलहाल सभी लोग जल्दी ही तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुके थे। तब तक रश्मि और राधिका ने मिलकर सभी लड़कों के लिए नाश्ता भी बना दिया था, क्योंकि आकाश के उठते ही रश्मि जाग गई थी और वो समझ चुकी थी कि आज ये लोग कुछ न कुछ बड़ा करने वाले हैं। उसने जानबूझकर किसी से कुछ नहीं पूछा और हंसी खुशी सबको नाश्ता कराने के बाद वो दोनों बेफिक्र हो गई थी। उनके जाने के बाद आस्था, जिसकी आंख खुल चुकी थी, उसने अरमान को अपने साइड में न पाकर मुंह बनाया और फिर फटाफट अंश को तैयार करके सीधा नीचे आ गई। नीचे आकर उसने यहां वहां देखते हुए रश्मि और राधिका से पूछा, राधिका दीदी, आज घर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? सब लोग कहाँ गए हैं? तब तक नानी माँ, दादी जी और अभिमान जी भी वहां आ गए थे। नानी माँ वहां आते ही अंश को गोद में ले लेती हैं और दादाजी भी अंश के साथ प्यार से बात करने लग जाते हैं। रश्मि ने आंखों ही आंखों में इशारे से आस्था को कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन दादाजी, नानी माँ और अभिमान जी के वहां मौजूद होने पर वो उसे ठीक से कुछ बता नहीं पा रही थी। इसलिए रश्मि ने आस्था की तरफ इशारा करते हुए फोन की ओर देखा। आस्था ने तुरंत अपना फोन उठाया तो रश्मि ने तुरंत मैसेज टाइप करके उसे भेज दिया, सभी लोग कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड करने के लिए बाहर गए हैं और अरमान भी आज ऑफिस जल्दी चला गया है। इस मैसेज को पढ़कर आस्था की आंखें शौक से फैल गई थी। उसके माथे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं। उसने नाखुश होकर सोचा, क्या वाकई मिस्टर सिंघानिया ऑफिस चले गए हैं? लेकिन वहां तो संजना मौजूद है। नहीं नहीं, मैं उस संजना के साथ अरमान जी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या पता वो चुड़ैल फिर से मेरे अरमान जी को कोई नया वायरस या ड्रग्स दे दे। मैं अरमान जी की हेल्थ को लेकर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे फटाफट ऑफिस जाना होगा। राधिका आस्था का चेहरा पढ़ते हुए एकदम से बोली, हमें पता था कि तुम ऑफिस जाओगी, इसलिए हमने पहले ही तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना दिया है। फटाफट खाओ और डोंट वरी, अंश का ध्यान हम रख लेंगे। इस पर आस्था हल्का सा मुस्कुराई और फटाफट से ब्रेकफास्ट करके मारिया के कमरे में आ गई। उसने देखा कि मारिया आज पूरी तरह से अपने कपड़े बदल चुकी थी। जैसे वो पहले सूट बूट में रहा करती थी, वैसे ही तैयार हुई थी। मारिया का बदला हुआ अंदाज देखकर आस्था थोड़ी देर के लिए जड़ हो गई थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मारिया इतनी जल्दी अपना काम शुरू कर देगी। मारिया को गंभीर देखकर आस्था थोड़ी उत्सुक हो गई और उसने नाराजगी जताई, दीदी, आप इस तरह से बेड से कैसे उठ सकती हैं? अभी आपको कम से कम एक महीना पूरा आराम करना होगा। आप ऐसे बेपरवाही से घूम फिर नहीं सकती। आस्था की आवाज में चिंता सुनकर मारिया हल्की सी मुस्कुराई और धीमी आवाज में उसे समझाते हुए बोली, क्वीन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस नानी माँ को मेरे पास भेज दीजिए। कहीं ना कहीं आस्था को मारिया का ये बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा था। आस्था को हैरानी हुई, पर अगले ही पल देर ना करते हुए उसने नानी माँ को आवाज लगा दी। जैसे ही नानी माँ की नजर मारिया पर पड़ी तो वो एकदम से चौंक गई और उसे डांटते हुए बोली, बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना, तुम ऐसे बिस्तर पर से नहीं उठ सकती हो। नानी माँ ने ये बात सुझाव की तरह नहीं बल्कि फैसले की तरह कही थी। मारिया ने नानी माँ की आवाज में छुपी हुई फिक्र भांप ली थी और वो उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, मैं जानती हूँ नानी माँ, डोंट वरी, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मैं घर से ही काम करूँ। मैं हाथ पर हाथ बांधकर नहीं बैठ सकती। ये बोलकर मारिया ने एक रूम की ओर इशारा किया जहाँ कितने ही सारे लैपटॉप, सिस्टम, मॉनिटर वगैरह रखे हुए थे। ये देखकर आस्था एकदम से दंग रह गई। उसके दिल और दिमाग में सवालों की आंधी थी। उसने मारिया का हाथ थामते हुए दबी हुई आवाज में पूछा, दीदी, ये सब स्क्रीन पर क्या चल रहा है? आप क्या करने वाली हैं? आस्था का सवाल सुनते ही मारिया के एक्सप्रेशन बदल गए और वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई और कॉन्फिडेंटली बोली, राजवीर जिंदल पर वे लोग उसके घर के सामने से नजर रखेंगे और मैं उस पर डिजिटल तरीके से नजर रखूंगी। मारिया का जवाब सुनकर आस्था को आश्चर्य हुआ और उसकी आंखों में खुशी चमकने लगी। वो मन ही मन एक्साइटेड हुई। उसने मारिया से कहा, अब राजवीर जिंदल के खैर नहीं। फिलहाल नानी माँ मारिया के बेटे को भी संभालने लगी थी। तब तक रौनक भी अपनी बेटी को लेकर नीचे आ गई थी। उसने अपनी बेटी नानी माँ को देते हुए कहा, नानी माँ, इसे संभालिए, पता ही नहीं ये कब बातें करेगी, कब बोलेगी, कैसे बताएगी कि इसे क्या खाना है, क्या पहनना है। पता नहीं मैं इसकी बातें कब समझूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इसके साथ क्या करूँ। रौनक के उस सवाल पर नानी माँ हल्का सा मुस्कुराई और कोमल आवाजें उसे समझाते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, हम है ना, हम तुम्हें पहले बच्चों की मसाज करना सिखाएंगे, फिर उन्हें कब भूख लगेगी और वो कब रोएगी सब बताएंगे। चलो आ जाओ। ये कहकर वो अंश को लेकर हॉल में चली आई थी। वहीं अंश दोनों छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था। कभी वो अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था, कभी अपने भाई के साथ, और बहुत खिलखिलाकर हंस रहा था। अभिमान जी और दादाजी दोनों को ये नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उनके दिल में सुकून सा घुल गया हो। तब तक राधिका और रश्मि ने भी बच्चों की मसाज के लिए ऑयल रेडी कर दिया था
और वो नानी माँ और रौनक को कंपनी देने के लिए एक साथ बैठ गई थी। अब रश्मि राधिका का घर पर ही एक अलग तरह का ट्रीटमेंट कर रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि जैसे ही राधिका के इंटरनल पार्ट्स पूरी तरह मजबूत हो जाएंगे, तब वो न सिर्फ बच्चों को सकुशल जन्म दे सकेगी बल्कि एक हेल्दी और अच्छी लाइफ भी जी सकेगी। इसलिए रश्मि ने राधिका की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। फिलहाल दूसरी ओर आस्था जल्दी तैयार होकर सबको गुड बाय कहकर ऑफिस के लिए निकल चुकी थी और इस बार वो रश्मि की स्कूटी से ऑफिस गई थी। आस्था को कार वगैरह जाना कुछ खास पसंद नहीं था। अरमान की वजह से उसके पास पहले काफी सिक्योरिटी रहती थी, लेकिन जब से अरमान की याददाश्त गई थी उसने उसकी सिक्योरिटी भी हटा दी थी। आस्था अब आजादी की सांस महसूस करती थी और देर न करते हुए वो स्कूटी से अरमान के ऑफिस की ओर रवाना हो चुकी थी। जैसे ही वो ऑफिस के करीब पहुंचने वाली थी, अचानक 8 से 10 काली गाड़ियां आकर आस्था को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये देखकर आस्था के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन दिखने लगा था। लेकिन तब तक कितने ही सारे हैट कैप वाले आदमी गाड़ियों से बाहर निकल आए। सबके हाथों में हॉकी स्टिक थी, मतलब साफ था कि वे आस्था की धुलाई करने के लिए वहां आए हैं। अगर उन्हें उसकी जान लेनी होती तो वे बंदूकें या धारदार हथियार लेकर आते। जाहिर था वे सिर्फ मारपीट करने के इरादे से वहां आए थे। आस्था के चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी तरह की घबराहट या नर्वसनेस छुपी हुई है। आस्था ने उन्हें फाड़ खाने वाली नजरों से घूरा और फिर झट से बोली, कौन हो तुम लोग और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? आस्था के सवाल को सुनते ही वे लोग अगले ही पल एक दूसरे को देखकर आपस में रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगे। फिर उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा और भद्दे तरीके से बोला, अगर हमें इस लड़की के साथ मारपीट करने का ऑर्डर न मिला होता तो मैं कुछ दिनों के लिए इसके साथ खूब अय्याशी और मजे करता। देखो ना ये कितनी खूबसूरत है, और जब ये बोलती है तो इसके मुंह से फूल झड़ते हैं। उसके बेशर्मी से कहे गए शब्द सुनकर अगले ही पल आस्था का पारा हाई हो गया। इन शब्दों को बर्दाश्त करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। आखिरकार आस्था का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, उससे पहले अचानक एक आदमी आगे बढ़कर हॉकी स्टिक से आस्था पर वार करता देता है।
वहीं दूसरी ओर ऑफिस में अरमान भले ही बैक टू बैक मीटिंग अटेंड कर रहा था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल वहां नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कहीं आस्था अबीर सिंह राठौर के साथ ना चली गई हो। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर रही थी। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जाकर ठहर रही थी कि जैसे आस्था वहां पर से आने वाली है। वहीं संजना अरमान को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी कि वो आस्था को एक कॉल कर सके। इसी बीच अरमान के फोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखते ही फौरन ही अरमान के चेहरे पर दुनिया भर का गुस्सा नजर आने लगा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बंद कर ली। अब देर न करते हुए वो ऑफिस से बाहर भागा। अरमान पर नजर पड़ते ही संजना बेचैन थी और कन्फ्यूज्ड भी। आखिरकार अरमान अचानक ऐसे क्यों भागा? लेकिन तब तक अरमान तेज स्पीड में भागते हुए उस लोकेशन पर पहुंच चुका था जहां आस्था को गुंडों ने घेरा हुआ था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 10 से 12 बॉडी बिल्डर लड़के जमीन पर बुरी हालत में पड़े थे। 3 से 4 लड़के अभी भी आस्था को घेरे हुए थे और आस्था उनकी धमाकेदार धुलाई कर रही थी। वो कभी उनकी हड्डियां तोड़ रही थी, कभी उनके हाथ, कभी लात से गिरा रही थी। आस्था को इस तरह से लड़ते हुए देखकर अरमान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा अजीब सा दिखाई देने लगा। उसे याद आया कि जिस दिन वो दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे, उसने आस्था के बारे में क्या क्या उटपटान बातें सोच लिया था, यहां तक कि उसने उसे डरपोक तक कह दिया था। अब उसे खुद की कही गई बात पर शर्म आ रही थी। आस्था को नाराजगी से घूरते हुए उसने अपने मन में सोचा, मैंने इस लड़की के बारे में जो सोचा था ये तो बिल्कुल उसकी उलट निकली। और उसी वक्त एक लड़का पीछे से आस्था के सर पर वार करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन अरमान अचानक आस्था के पीछे जाकर खड़ा हो गया और वो वार आस्था की जगह अरमान के सर पर पड़ा। ये देखकर आस्था का गुस्सा फट पड़ा। उसने आव देखा ना ताव, वो जोर से चिल्लाई, मिस्टर सिंघानिया आप ठीक है ना? लेकिन तब तक अरमान ने अपने हाथ से उस गुंडे की गर्दन दबोच ली थी और वहीं उसकी गर्दन मरोड़ कर रखती थी। तब तक आस्था ने बचे हुए गुंडों को भी निपटा दिया था और वो हड़बड़ाकर अरमान की तरफ भागती हुई आई और उसे देखते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया आप ठीक तो है ना? जिस जगह माथे से आस्था को खून निकल रहा था, उसी जगह अब अरमान को भी माथे से खून निकल रहा था, लेकिन दोनों को दर्द का कोई एहसास नहीं था। वहीं अब अरमान ने आस्था को अपने सामने खड़ा किया और अपने ही टिश्यू से उसके सर पर लगे ब्लड को साफ करने लगा था। इस पर आस्था ने अरमान से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि मुझ पर इस तरह का कोई हमला हुआ है? अब जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, अरमान ने एक गहरी सांस ली और एकदम से कहा, मुझे नहीं पता, किसी अनजान नंबर से मुझे मैसेज आया था कि तुम पर इस तरह से हमला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। और शायद तुम भूल रही हो कि तुम अरमान सिंघानिया की बीवी हो और मेरे दुश्मन कब, कहाँ और कैसे हमला कर दे, इस बात का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हें इस तरह खुलेआम घूमना फिरना नहीं चाहिए। अरमान की ये तीखी बातें सुनकर लग रहा था जैसे आस्था ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अरमान के चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ दिख रहे थे। वो बार बार आस्था से नजरें चुरा रहा था। उसे खुद से दूरी बनाते देख आस्था के दिल में एक बेचैनी से हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जल्द ही वो दोनों ऑफिस जाने के लिए निकल पड़े। वहीं संजना गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। इस वक्त उसका दिल दो नावों की सवारी कर रहा था। वो मन ही मन कोड़ रही थी, ये आस्था तो काफी तेज निकली। उसने आराम से इतने सारे गुंडों को मार गिराया और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिरकार किसी की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है? लेकिन चाहे कुछ भी हो, भले ही तुम इस बार मेरे प्लान से बच गई हो, लेकिन मेरे प्लान बी से तुम कभी भी नहीं बच पाओगी। ये सोचते हुए संजना के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट थी। तब तक अरमान आस्था को लेकर ऑफिस आ गया था और ऑफिस में आकर सबसे पहले फर्स्ट एड से उसने उसके सर पर स्ट्रेचिंग कर दी थी। आस्था ने भी अरमान के सिर पर मरहम लगाया था। अरमान उसे मना करना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वो उसे मना नहीं कर पाया। थोड़ी देर चुप्पी के बाद आस्था ने गहरी सांस ली और अरमान की ओर देखते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं घर जाना चाहती हूँ। आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे। ये सुनकर अरमान ने उसे कुछ नहीं कहा। वैसे भी आस्था को चोट लगी थी, तो वो खुद चाहता था कि आज आस्था आराम करे। साथ ही साथ उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो इस लड़की के साथ में इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकता है।